अज्ञानिरानन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय निपदाय कृष्णाय कृष्ण तद्भक्ताय तवै वास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिय तं नयमामि शरणम्। वेदों में कहा गया है जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता अर्था जिन लोगों की भगवान में पराभक्ति है, प्रेम भक्ति है, और वैसी ही भक्ति गुरुदेव के भी चरणों में यदि है तो सारे शास्त्र यथार्थ अर्थों को उस भक्त के हृदय में प्रकाशित कर देता है, विधि प्रकाशित कर देते हैं। और भी कहा गया भयं इतियाद अभिनिवेश तस्या विपर्यो स्मृति तन्माया तो बुधा आभयम् तं गुरु देवतात्मा। भगवान को भूलकर हमारी बुद्धि विपर्यय हो गई है, उलट गई है, अर्थात भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए न होकर के संसार के विषयों में प्रेम हो गया है। और करोड़ों करोड़ों जन्मों से संसार में घूम रहे हैं आवागमन के चक्कर में, इसलिए गुरुदेव को जो प्रिय समझकर प्रिय बंधु और भगवान का भजन करता है वो शीघ्र ही भव सागर को तर जाता है। भागवत में कहते हैं तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम श्राब्दे च तस्मात माने इसलिए, किस लिए? जब संसार की नश्वरता कोई समझ ले कि संसार में सुख नहीं है, जो थोड़ा सा सुख दिखता है वह भी दुख ही है, जब यह उसके समझ में पूरी तरह से आ जाए तब उत्तम कल्याण जानने के लिए, उत्तम कल्याण क्या है, श्रेय उत्तम, उत्तम कल्याण माने कृष्ण के साथ में हमारा क्या संबंध है और उस संबंध के द्वारा किस रूप में किस प्रोसेस से कृष्ण की सेवा करनी है, या जब समझ में आ जाए तो ऐसे ही सप्त ब्रह्म में और पर ब्रह्म में निष्णा अनुभव। सप्त ब्रह्म माने अखिल शास्त्रों में पारंगत हों, जो हमारे सब प्रकार की शंकाओं को मिटा सकते हैं, कोई संदेह हुआ झट मिटा दें, पर ब्रह्म की अनुभूति हो। ब्रह्म माने कौन, कृष्ण भगवान, इनकी अनुभूति संपन्न, नाम भजन परायण और संसार से परम विरक्त, ऐसे गुरु का आश्रय लेकर के भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए गुरु परंपरा के विचारों को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। पहले गुरु कौन है, कृष्ण स्वयं है, जिन्होंने आज से करोड़ों वर्ष पहले अर्जुन से कह रहे हैं, मैंने यह ज्ञान तुमको जो मैं दे रहा हूं करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को दिया, फिर सूर्य से मनु, मनु से धीरे धीरे इधर में आते हुए ब्रह्मा नारद और सबसे तो ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिनका जन्म द्वीप में हुआ था, कहां द्वीप में, मथुरा में ही, यमुना के कृष्ण गंगा घाट के पास में, उस समय बीच में एक टापू बन गया था, और पराशर ऋषि भगवान के परम भक्त तत्व को जानने वाले, वो किसी कारण से मथुरा आए थे, जाने में विलंब हो गया, शाम हो गई, तो मल्ला को उन्होंने बुलाया, मल्ला दिन भर का थका हुआ था, उसने अपनी बेटी को भेज दिया, बेटी का नाम सत्यवती था, वो अस्परा के गर्भ से पैदा हुई थी, उसको उस नाविक ने पाला पोसा था, उसका जब बेटी उनको पार कराओ, उस पार में वहीं पर उनका आश्रम था, दुर्वासा का आश्रम जहां है, दुर्वासा ऋषि के पास ही में पराशर जी का आश्रम था, उनको पहुंचा दिया नौका से पार कर। जब वो द्वीप के पास में आई तो दैवश उस ब्रह्मचारी ऋषि पराशर उस लड़की के तरफ में देखा, और देखते देखते ही उसको गर्व हो गया, और गर्व से 16 वर्ष का बच्चा, लंबा चौड़ा श्याम रंग का, बहुत सुंदर, 16 वर्ष का जैसा वो पैदा हुआ, इसलिए इनको कृष्णा वही पायन व्यास कर द्वीप में इनका जन्म हुआ। फिर पराशर जी ने लड़की से कहा कि तुम्हारा कौमार ठीक रहेगा, संतनु ऋषि आएंगे और उसे तुम्हारा ब्याह होगा, और फिर उसे तुम्हारा वंश चलेगा, तुम डरो मत, और चले गए। फिर व्यास से कौन हुआ, सुखदेव गोस्वामी जी, सुखदेव गोस्वामी, किंतु एक धारा उधर सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी से आई, और दूसरी धारा वो व्यास जी को साक्षात मध्वाचार्य जी ने दर्शन किया बद्रिकाश्रम में और वहीं उनको दीक्षा शिक्षा हुई और फिर मध्वाचार्य से परंपरा से हमारे माधवेंद्र पुरीपाद जी हुए भक्ति कल्प तत्व थरू के प्रथम अंकु माधवेंद्रपुरी और उनसे ईश्वरपुरी पाद जी गया में महाप्रभु जी से भेंट हुई उनको दीक्षा मंत्र गोपाल मंत्र दिया और फिर उनसे एक धारा स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी रूप सनातन कविराज गोस्वामी नरोत्तम ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जगन्नाथ दास बलदेव विद्याभूषण और फिर उनसे जगन्नाथ दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी तब श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती और हम लोगों के भी उसके बाद में ऐसे धारा चल गई। केवल गुरु को मानने से गुरु परंपरा की धारा नहीं मानने से गड़बड़ हो जाएगा तो वो दिव्य ज्ञान है वो नहीं आएगा। इसलिए गुरु परंपरा को भी पूजा करते हैं। व्यास पूजा के दिन में नित्यानंद प्रभु जी ने महाप्रभु जी की पूजा की थी। शिवास पंडित जी तैयार थे उनके घर में पोथी भी है व्यास पूजा की और सुपारी पान और सब चीजें जो द्रव्य हैं पूजा के वो सब उनके घर में मौजूद है। उन्होंने जो कल हमारे यहाँ पर व्यास पूजा होगी उस दिन सब लोग अद्वैताचार्य से लेकर सब लोग वहीं पर उपस्थित हुए और भक्त लोग शिवास पंडित कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु जी आज पूरा आरंभ कीजिए और वे हूं कर रहे हैं। इतने में जब महाप्रभु आए तो शिवास जी ने कहा जाइए नित्यानंद प्रभु जी पूजा नहीं कर रहे हैं किंतु जब ही महाप्रभु जी आए उस माला लेकर के उनके गले में दे करके उन्हीं की पूजा की इसको महाप्रभु नित्यानंद जी ने इस तरह से व्यास पूजा हुई क्योंकि महाप्रभु ही कृष्ण है। इसके बाद में व्यास पूजा हुई। इस तरह से हम लोग देखते हैं प्राचीन काल से ही गुरु पूजा को भगवान की पूजा मानकर दृढ़ता पूर्वक उनके चरणों में शरणागत होना उनकी पूजा है ये करना है। गुरु के चरणों में जिनको विश्वास नहीं है सन्देहात्मा विनश्यति विनश्य विनाश उसका होगा। सद्गुरु भगवान का मिलना सहज है यदि शुद्ध गुरु क्वालिफाइड गुरु तस्मात गुरु प्रपद्येत ये लक्षण वाला गुरु यदि मिल जाए तो कोटि कोटि जन्म की स्वीकृति इसको समझना चाहिए। गुरु यदि पक्का मिल गया योग्य मिल गया तो भाव सागर करना बहुत सहज हो जाता है और सद्गुरु ना मिल करके कलयुगी गुरु मिल जाए लाख लाख गुरु मिले शिष्य मिले ने को और शिष्य यदि मिलते भी हैं तो गुरु नहीं मिलते ऐसा समझ करके गुरु के चरणाश्रय करके गुरु जो कहते हैं उसके मनोभीष्ट को समझना चाहिए क्या चाहते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम रूप गोस्वामी अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानकर वैसा कर बतलाया ना कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, कोटि कोटि जन्मों के बाद में, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में मनुष्य जन्म ये मिला है, इसको विषय में मत गवाओ, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, गृहस्थ में भी रहते हो तो उसमें आसक्त नहीं हो, अनासक्त हो करके काम करो और भगवान के चरणों में आसक्ति हो। तुर्णम जते तना पति, क्षणभंगुर है किंतु परमार्थ को देने वाला है मनुष्य। इसके बाद में करोड़ों करोड़ों जन्म सूकर गधे इत्यादि के रूप में होगा, कोई नहीं जानता, फिर भजन नहीं होगा। इसलिए मनुष्य जन्म को एक सेकंड भी मत गवाओ। कुछ कुछ ब्रह्मचारी लोग संसार में लौटने की चेष्टा करते हैं, विवाह करते हैं, बहुत धिक्कार की बात है। हर कथा सुन करके वैष्णव के साथ में रहकर उनकी ऐसी वासना क्यों जन्म लेती है मैं नहीं समझता। शुद्ध रूप से भजन करने से संसार से वैराग्य आएगा, तत्व ज्ञान अपने आप पूर्ण होगा, निश्चित रूप में होगा। फिर ऐसी बात भी है, यदि हरि कथा सुनते हैं, हरि कथा तो खूब सुनते हैं, बैठते हैं, हरिनाम भी करते हैं दिन रात चलते फिर, और मन कहाँ रहता है कब सुंदर हमारा विवाह हो जाए, कब सुंदर रूप में ऐसा हमको इतना धन हो जाए, अपना घर हो जाए, अपनी बीवी हो जाए, किंतु नहीं जानता है ये मृत्यु की आग है, नहीं जानता, समझाने पर भी नहीं समझते। पहले इस चीज को समझो, करोड़ों करोड़ों बार जन्म हुआ, देवता तक भी हुए, गंधर्व भी हुए, बहुत होगा तभी उसमें से अरुचि नहीं हो गई। इसलिए क्या स्त्री क्या पुरुष विषयों से अनासक्त होकर विषय में रहते हुए भी और भगवान का भजन जी कर लो, मृत्यु से पहले ही गुरु की सेवा का फल तो यह है, बिना साधन भजन किए हुए वो भव सागर से तर जाता है, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। उपनिषदों के अनुसार में अरुणी की गुरु भक्ति प्रसिद्ध है, अरुणी दाल क्या नाम, क्या नाम, नहीं अरुणी उपमन्यु, और यस अरुणी गुरु जी के पास में पहुंचा, बहुत प्राचीन की बात है, सत्यजुग की बात, और गुरु जी ने कहा 25 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो और हमारी गौओं की सेवा करो और गुरुवाणी जैसा आदेश करे वैसा करो। 25 वर्ष बीत जाने के बाद में एक दिन शाम को बहुत जोर से मूसलाधार वर्षा हो रही थी, आकाश में मेघ को देखकर गुरुवाणी ने कहा घर में सूखी लकड़ी नहीं, हाँ वहां मेघ में बरसा हो रहा है, गुरुजी ने कहा जे जाओ खेत की मेड़ बांधो नहीं तो पानी निकल जाएगा तो उसमें धान रोपण नहीं होगा। रात में गया, ठंड है, माघ महीने की ठंड ठिठ ठुराती हुई और वो कुदाल से लेकर के मट्टी देने लगा, मेड़ बांधने लगा। किंतु पानी इतने जोर से आ रहा था ऊपर से जो बंद न हो। अंत में थक कर वह अपने आप वहां पर लेट गया, ठंड के मारे एकदम मरने मरने हो गया, किंतु गुरु का आदेश पालन करने के लिए वहीं पर लेटा रहा। जब सवेरा होने आया तो गुरु जी पहुंचे। अरणी अरणी तुम कहाँ हो? तो क्षीण स्वर में बोला जी मैं गुरु जी यहाँ। गुरु जी अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मैं मेड़ को बांधने की बहुत चेष्टा की किंतु मिट्टी से नहीं हुआ तो मैं खुद ले उठाओ जाओ, मेरा आशीर्वाद है। सब विद्या जिसके लिए तुम हमारे पास में आया तुम्हारे हृदय में विदित हो जाए। सर्व उपनिषदों का वो ज्ञाता हो गया एक क्षण में, अधिक समय नहीं लगा। और उपनिषद ब्रह्म जिसको कहते हैं वो उसके ध्यान में लग गया और सागर से पार हो गया। उपनिषद ब्रह्म जानते हैं ना, निराकार है, निर्विशेष है, ऐसा जो ब्रह्म है ऐसे ही उद्दालक था उपमन्यु। गुरु ने कहा कि 25 वर्ष तक हमारे घर में गैयों को चराओ। गैया चराने लगा। 25 वर्ष के बाद में उन्होंने पूछा अजी तुम मोटे छोटे दिखते हो, क्या खाते हो? हमारे यहाँ तो कुछ खाते नहीं हो। तो गैयाओं का दूध बछड़े पी करके जो रख देते हैं बाकी मैं पी लेता हूँ। ओ ऐसा मत करना, बछड़ों को कष्ट मत देना। चला, किंतु कैसे जीविका निर्वाह हो ये नहीं बतलाया, चला गया। कुछ दिनों के बाद में फिर उससे पूछा अरे तुम गैया का तो दूध खाता है? तो नहीं, फिर भी मोटा छोटा है, क्या बात है, क्या कर लेता है? गैया जब बैठ करके पागुर करती हैं तो मुख से फेन निकल जाता है, मैं उसको निकाल करके खा लेता हूं। वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा मत कर। फिर चला गया। एक दिन गैयों को चराता चराता बड़ी भूख लगी। एक वन एक होता है पत्ता, उसमें दूध निकलता है पत्तों से, वो बड़ा विषैला होता है, उसके फूल शंकर जी को चढ़ते हैं क्योंकि विष के भक्त हैं। तो भूख लगी तो क्या करेगा, वही खाया पत्तों का दूध, और उसे आंखें उसकी मारी गई, एक कुओं में गिर गया। गौ में लौट आई, वो आया नहीं। मुझे ने कहा जी कहां गया? ढूंढते ढूंढते पुकारते पुकारते उपमन्यु उपमन्यु उसके निकट में पहुंचे। गुरु जी मैं कुएं में गिर पड़ा। तो कैसे गिर गया? तो एक वन का दूध मैंने लिया और उसे आंखें हमारी मारी थी। गुरु जी ने उसको निकाला और कहा ये तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं और वेद शास्त्र उपनिषद सब कुछ एक सेकंड के अंदर में अभी तुरंत हो जाए, सभी कुछ हो। कलयुग के प्रारंभ में शंकराचार्य अपने चार शिष्य और सब शिष्यों के साथ में, प्रधान प्रधान दिग्विजयी पंडित शिष्यों के साथ में बद्री नारायण में गए थे। वहां का रोज उनका प्रवचन होता, वो रोज प्रवचन करते थे। उसमें एक ऐसा लड़का था जो निरक्षर था, कुछ जानता नहीं था, वही शंकराचार्य की सब सेवा करता था, कपड़ा साफ करना, रसोई बनाना, जब जो कुछ सब कुछ वही करता था, किंतु पढ़ा लिखा नहीं था। एक दिन गंगा के उस पार में यह कपड़ा साफ करने के लिए और साफ करके साफ कर रहा था, इतने में 4 बज गया, प्रवचन का आरंभ हो गया। सब बड़े बड़े पंडित उनके जो शिष्य थे नामी नामी, गुरु जी प्रवचन आरंभ कीजिए, किंतु उन्होंने नहीं किया। फिर कहा जी आप प्रवक्त किसके लिए रुक रहे हैं, हम लोग तो सभी आ गए हैं। आ तो वो तो नहीं आया, वो तो मूर्ख है, कुछ जानता नहीं है, वो तो कुछ समझता नहीं है, आप आरंभ कीजिए। किंतु उन्होंने नहीं किया। जब वो आया दौड़ते हुए, गुरु जी को प्रणाम किया तो ऐसा स्तोत्र करने लगा, स्तोत्र स्तुति स्तव स्तुति, बड़ी जटिल, जो उन विद्वानों के समझ में नहीं आई, तत्व होल्ड। आपको देख करके दंग रहेंगे, ये गुरु सेवा का फल है। तो ये गुरु सेवा के आदर्श हैं। आप लोग जानते हैं ये कृष्ण बलदेव गुरु आश्रम में गए, उनके साथ में द्वारका के एक सुदामा भी गया, युवक लड़का उनके साथ आश्रम में रहा, गुरु के आदेश को पूर्ण करने के लिए सूखी लकड़ी गढ़ने के लिए गए, और इतनी जोर से वर्षा हुई किधर जाएं किधर नहीं जाएं, पानी चारों तरफ में भर गया, कितना पानी है कुछ था नहीं, भगवान के लिए तो कुछ असंभव नहीं है जानना, तो भी सारी रात लकड़ी की गठरी भीज न जाए पानी में, सिर पर रख करके और खड़े रहे। जब सवेरा हुआ तो सांदीपनी उनको खोजते खोजते पहुंचे, कैसे विलंब हो गया तो पानी इतना भर गया कि हम लोग आ नहीं सके, जो तुम्हारी सौ सारी मनोकामना सारी 64 का लाभ विद्या ये गुरु का फल है। मैं अपने जीवन में भी प्रत्यक्ष करता हूं, मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी नहीं, और गुरु की सभा करने से आज विश्व के समस्त राष्ट्रों के बड़े बड़े विद्वान, कॉलेज के डीन, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर सभी लोग सुन रहे हैं मेरे को, ये गुरु सेवा का फल है और कुछ नहीं। हमारे गुरु जी सेवा के आदर्श हैं, उनके बहुत से शिष्य थे, किंतु जब जरूरत पड़ी नवदीप के स्मार्ट ब्राह्मणों ने और सजिया वैष्णव ने उनको मार डालना चाहा, तो गुरु जी ने अपना साधारण सादा वेश उनको दे दिया और उनका संन्यास का वेश ले लिया और उनको मायापुर में दे, प्राण जाने की वो हथेली में रखा। इसलिए ये गुरु सेवा का विधान है, इसको सीखो तुम लोग। अच्छा कीर्तन करो गुरुदेव का।